पृष्ठ संख्या 127 अध्याय 23 साहित्य का आधार। साहित्य का संबंध बुद्धि से उतना नहीं जितना भाव से है। बुद्धि के लिए दर्शन है, विज्ञान है, नीति है। भाव के लिए कविता है, उपन्यास है, गद्य काव्य है। आलोचना भी साहित्य का एक अंग मानी जाती है, इसीलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है। साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है जो उसके रस प्रवाह में बाधक होती है, तो वही साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत में कोई बेसुरी ध्वनि उसे दूषित कर देती है, बुद्धि और मनोभाव का भेद काल्पनिक ही समझना चाहिए। आत्मा में विचार, तुलना, निर्णय का अंश, बुद्धि और प्रेम, भक्ति, आनंद, कृतज्ञता आदि का अंश भाव है। ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, मत्सर आदि मनोविकार है। साहित्य का इनसे इतना ही प्रयोजन है कि वह भाव को तीव्र और आनंद वर्धक बनाने के लिए इनकी सहायता लेता है। उसी तरह जैसे कोई कारीगर श्वेत को और श्वेत बनाने के लिए श्याम की सहायता लेता है। हमारे सत्य भाव का प्रकाश ही आनंद है, असत्य भाव में तो दुख का ही अनुभव होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असत्य भाव में भी आनंद का अनुभव हो। हिंसा करके या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगों को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यह मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। चोर को प्रकाश से अंधेरा कहीं अधिक प्रिय है, इससे प्रकाश की श्रेष्ठता में कोई बाधा नहीं पड़ती। हमारा जैसा मानसिक संगठन है उसमें असत्य भाव के प्रति घृणा में दया ही का उदय होता है। जिन भाव द्वारा हम अपने को दूसरों से मिला सकते हैं वही सत्य भाव है। प्रेम हमें अन्य वस्तुओं से मिलाता है, अहंकार पृथक करता है। जिसमें अहंकार की मात्रा अधिक है वह दूसरों से कैसे मिलेगा। अतएव प्रेम सत्य भाव है, अहंकार असत्य भाव है। प्रकृति से मेल रखने में ही जीवन है। जिसके प्रेम की परिधि जितनी ही विस्तृत है उसका जीवन उतना ही महान है। जब साहित्य को सृष्टि भावोत्कर्ष होती है तो यह अनिवार्य है कि उसका कोई आधार हो। हमारे अंतःकरण का सामंजस्य जब तक बाहर के पदार्थों या वस्तुओं या प्राणियों से न होगा जागृति हो ही नहीं सकती। भक्ति के लिए कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए, दया करने के लिए भी किसी पात्र की आवश्यकता है, धैर्य और साहस के लिए भी किसी सहारे की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि हमारे भाव को जगाने के लिए उनका बाहर की वस्तुओं से सामंजस्य होना चाहिए। अगर बाह्य प्रकृति का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े, अगर हम किसी को पुत्र शोक में विलाप करते देखकर आंसू की चार बूंदे नहीं गिरा सकते, अगर हम किसी आनंदोत्सव में मिलकर आनंदित नहीं हो सकते, तो यह समझना चाहिए कि हम निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या 128। उस दशा के लिए साहित्य का कोई मूल्य नहीं। साहित्यकार तो वही हो सकता है जो दुनिया के सुख दुख से सुखी या दुखी हो सके और दूसरों में सुख या दुख पैदा कर सके। स्वयं दुख अनुभव कर लेना काफी नहीं है। कलाकार में उसे प्रकट करने का सामर्थ्य होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां मनुष्य को भिन्न दशाओं में डालती हैं। मनुष्य मात्र में भाव की समानता होते हुए भी परिस्थितियों में भेद होता ही है। हमें तो मिठास से काम है, चाहे वह अब ऊख में मिले या खजूर में या चुकंदर में। अगर हम किसानों में रहते हैं या हमें उनके साथ रहने के अवसर मिले हैं, तो स्वभावतः हम उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगते हैं और उससे उसी मात्रा में प्रभावित होते हैं जितनी हमारे भाव में गहराई है। इसी तरह अन्य परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। अगर इसका अर्थ यह लगाया जाए कि अमुक प्राणी किसानों का या मजदूरों का या किसी आंदोलन का प्रोपेगेंडा करता है, तो यह अन्याय है। साहित्य और प्रोपेगेंडा में क्या अंतर है, इसे यहाँ प्रकट कर देना जरूरी मालूम होता है। प्रोपेगेंडा में अगर आत्म विज्ञापन न भी हो तो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने की वह उत्सुकता होती है जो साधनों की परवाह नहीं करती। साहित्य शीतल मंद समीर है जो सभी को शीतल और आनंदित करती है। प्रोपेगेंडा आंधी है जो आंखों में धूल झोंकती है, हरे भरे वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और झोपड़े तथा महल दोनों को ही हिला देती है। वह रस विहीन होने के कारण आनंद की वस्तु नहीं, लेकिन यदि कोई चतुर कलाकार उसमें सौंदर्य और रस भर सके तो वह प्रोपेगेंडा की चीज न होकर सद साहित्य की वस्तु बन जाती है। अंकिल टॉम्स केबिन दास प्रथा के विरुद्ध प्रोपेगेंडा है, लेकिन कैसा प्रोपेगेंडा है जिसके एक एक शब्द में रस भरा हुआ है, इसीलिए वह प्रोपेगेंडा की चीज नहीं रहा। बर्नार्ड शाह के ड्रामे, वेल्स के उपन्यास, गाल्स वर्दी के ड्रामे और उपन्यास, डिकेंस, मेरी कालेरी, रोमा रोला, टॉल्स्टॉय, दास्तावेस्की, मैक्सिम गोर्की, सिकलेयर, कहाँ तक गिनाए, इन सभी की रचनाओं में प्रोपेगेंडा और साहित्य का सम्मिश्रण है। जितना शुष्क विषय प्रतिपादन है वह प्रोपेगेंडा है, जितनी सौंदर्य की अनुभूति है वह सच्चा साहित्य है। हम इसीलिए किसी कलाकार से जवाब तलब नहीं कर सकते कि वह अमुक प्रसंग से ही क्यों अनुराग रखता है, यह उसकी रुचि या परिस्थितियों से पैदा हुई परवशता है। हमारे लिए तो उसकी परीक्षा की एक ही कसौटी है, वह हमें सत्य और सुंदर के समीप ले जाता है या नहीं। यदि ले जाता है तो वह साहित्य है, नहीं ले जाता है तो प्रोपेगेंडा या उससे भी निकृष्ट है। हम अक्सर किसी लेखक की आलोचना करते समय अपनी रुचि से पराभूत हो जाते हैं, ओह इस लेखक की रचनाएं कौड़ी काम की नहीं, यह तो प्रोपेगेंडिस्ट है, यह जो कुछ लिखता है किसी उद्देश्य से लिखता है, इसके यहाँ किलरों का दारिद्र्य है, इसकी रचनाओं में स्वानुभूत दर्शन नहीं इत्यादि। हमें किसी लेखक के विषय में अपनी राय रखने का अधिकार है, पृष्ठ संख्या 129। इसी तरह औरों को भी है, लेकिन सद साहित्य की परख वही है जिसका हम उल्लेख कर आए हैं, उसके सिवा कोई दूसरी कसौटी हो ही नहीं सकती। लेखक का एक एक शब्द दर्शन में डूबा हो, एक एक वाक्य में विचार भरे हो, लेकिन उसे हम उस वक्त तक सद साहित्य नहीं कह सकते जब तक उसमें रस का स्रोत न बहता हो, उसमें भाव का उत्कर्ष न हो, वह हमें सत्य की ओर न ले जाता हो, अर्थात बाह्य प्रकृति से हमारा मेल न कराता हो, केवल विचार और दर्शन का आधार लेकर वह दर्शन का शुष्क ग्रंथ हो जाता है, सरस साहित्य नहीं हो सकता। जिस तरह किसी आंदोलन या किसी सामाजिक अत्याचार के पक्ष या विपक्ष में लिखा गया रसहीन साहित्य प्रोपेगेंडा है, उसी तरह किसी तात्विक विचार या अनुभूत दर्शन से भरी हुई रचना भी प्रोपेगेंडा है। साहित्य जहाँ रसों से पृथक हुआ वहीं वह साहित्य के पद से गिर जाता है और प्रोपेगेंडा के क्षेत्र में जा पहुँचता है। ऑस्कर वाइल्ड या शाह आदि की रचनाएं जहाँ तक विचार प्रधान हो वहाँ तक रसहीन है। हम रामायण को इसीलिए सद साहित्य नहीं समझते कि उसमें विचार या दर्शन भरा हुआ है, बल्कि इसीलिए कि उसका एक एक अक्षर सौंदर्य के रस में डूबा हुआ है, इसीलिए कि उसमें त्याग और प्रेम और बंधुत्व और मैत्री और साहस आदि मनोभाव की पूर्णता का रूप दिखाने वाले चरित्र हैं। हमारी आत्मा अपने अंदर जिस अपूर्णता का अनुभव करती है उसकी पूर्णता को पाकर वह मानो अपने को पा जाती है और यही उसके आनंद की चरम सीमा है। इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि बहुधा एक लेखक की कलम से जो चीज प्रोपेगेंडा होकर निकलती है वही दूसरे लेखक की कलम से सद साहित्य बन जाती है। बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर मुनहसर है। हम जो कुछ लिखते हैं यदि उसमें रहते भी हैं तो हमारा शुष्क विचार भी अपने अंदर आत्म प्रकाश का संदेश रखता है और पाठक को उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। वह श्रद्धा जो हम में है मानो अपना कुछ अंश हमारे लेखों में भी डाल देती है। एक ऐसा लेखक जो विश्व बंधुत्व की दुहाई देता हो पर तुच्छ स्वार्थ के लिए लड़ने पर कमर कस लेता हो, कभी अपने ऊंचे आदर्श की सत्यता से हमें प्रभावित नहीं कर सकता। उसकी रचना में तो विश्व बंधुत्व की गंध आते ही हम ऊब जाते हैं, हमें उसमें कृत्रिमता की गंध आती है और पाठक सब कुछ क्षमा कर सकता है। लेखक में बनावट या दिखावा या प्रशंसा की लालसा को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे लेखक में कुछ श्रद्धा है तो वह उसके दर्शन, विचार, उपदेश, शिक्षा सभी असाहित्यिक प्रसंगों में सौंदर्य का आभास पाता है। अतएव बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर निर्भर है, लेकिन हम लेखक से परिचित हो या न हो अगर वह सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है तो हम उसकी रचना में आनंद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं सकते। साहित्य का आधार भाव का सौंदर्य है, इसके परे जो कुछ है वह साहित्य नहीं कहा जा सकता।